ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों से कम लागत वाली और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के पहले सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हितों को परिभाषित करता है। इराक ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की है। इराक के उप प्रधानमंत्री फवाद हुसैन आज बैठक में शामिल हुए और कहा कि इराक ग्लोबल साउथ का एक अभिन्न अंग है और सभी के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में जारी है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पार्टी सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में विचार विमर्श हो रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा पदाधिकारियों की ये पहली बड़ी बैठक है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्ण की याचिकाओं के संबंध में दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि सिद्धारमैया ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर प्राधिकरण की भूमि अपने करीबियों और परिवार के सदस्यों को दे दी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय न्याय संहिता देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को और आधुनिक बना देगी। केरल उच्च न्यायालय के सम्मेलन में श्री मेघवाल ने कहा कि त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था सुशासन के लिए आवश्यक है। श्री मेघवाल ने कहा कि त्वरित न्याय सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उनसे व्यापक जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही। उन्होंने वर्ष 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की। आकाशवाणी समाचार से हर घंटे प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। यह 17-18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे प्रभावी होगा। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिन का प्रसारण पहले होगा, उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।